नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाकान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयताम सुरतोर्पंग मा मंद मतेर्गतिमत्सर्वस्वदाम भोजो राधा मदन मोहन यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै सांगवदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। कल हम ब्रह्म विमोहन लीला चर्चा किए, जिसमें तीन प्रकार के जो अनर्थ है, एक है कर्म के प्रति आसक्ति, ज्ञान के प्रति आसक्ति और कृष्ण का ऐश्वर्य को माधुरी से के श्रेष्ठ समझना, यानी भगवान ऐश्वर्यवान है तो इनकी माधुरी जो है वो भगवान के लोकप्रियुक्त कार्य नहीं है, मधुरता उनके अंदर नहीं है, या है भी तो गौण है सोचना, ये ब्रह्मा जी के अंदर था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का वास्तविक स्थिति दिखा के उन्होंने प्रकाशित किया, ये इस प्रकार के अनर्थों को हमारे हृदय से निकालते हैं। अभी आज हम दो अनर्थों का चर्चा करेंगे, दो असुरों का, एक है देनुका असुर, दूसरा है कालिया। भगवान श्री कृष्ण अभी 5 साल उनका पूरा हुआ और 6ठे साल में पहुंचे, यानी पौगंड में पहुंचे। तो पौगंड से ये 5-6ठे साल में उनका उनके पास योग्यता आया। भगवान श्री कृष्ण 3 साल के थे, क्या हुआ तो उनको बछड़ों को चलाने के लिए परमिशन मिला था। अभी जब 5 साल के हो गए या 5 साल से 6 साल के अंतर्गत आए तो उनको गायों को चरने का मौका हुआ, प्राप्त हुआ। तब कृष्ण और बलराम गायों को चरने के लिए अभी तैयार हो गए, गायों को लेकर चरने के लिए लेके जा रहे थे। अभी ऐसा था कि भागवतों में वर्णन है कि कृष्ण और बलराम जब गायों को चरने के लिए योग्य हो गए, इसका मतलब क्या है, अभी गायों को चरने के लिए जंगल के घने जंगल में जाना पड़ता है। पहले तो वृंदावन के बस आजू बाजू में थे, अभी अंदर की ओर जाना पड़ता है। तो इसके द्वारा सारे जितने भी जंगल के वृक्ष है और वृंदावन धाम स्वयं, वो बहुत खुश और प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि अभी तक कृष्ण और बलराम को उनका दर्शन नहीं हुआ था और उनके चरण कमल भी, चरण चिन्ह जो है वो जब बच्चे छोटे रहते हैं उनका चरण चिन्ह पूरा विकसित नहीं हुआ रहता है, कृष्ण 6 साल के हो गए तो उनका चरण चिन्ह जो है वो और विकसित हो गया था, तो उनका चरण चिन्ह उनके जमीन के वृंदावन धाम के ऊपर पड़ रहा था और कृष्ण वृक्षों की फल भरा हुआ, फल से भरा हुआ वृक्षों की झुकावट को देख के कृष्ण बलराम को कहते हैं, हे बलराम देखो ये कृष्ण कितने सौभाग्यवान है कि वो आपके चरण कमलों की वंदना करना चाहते हैं, और कृष्ण बलराम की स्तुति करने लगे। अस्तित्व में कृष्ण को मालूम था कि ये सारे वृक्ष जो है वो बहुत उनके भक्त है, उनके पार्षद है और वो उनको स्वागत कर रहे वृंदावन में धाम में, लेकिन अभी बलराम एक अद्भुत सा लीला प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण उनको मालूम था कि बलराम जी को अभी स्तुति करते हुए उनको गुणगान करते हुए चलते जंगल के अंदर गए। तो इतना अंदर तक चले गए, जितने भी ग्वाल बाल वगैरह थे उनको बहुत भूख लगने लगा, तो सभी लोग आके बलराम जी से पूछने लगे हमको भूख लग रहा है कुछ करो कुछ करो। बलराम जी तो सारे बल के स्रोत है, तो एक बालक ने कहा कि नजदीक में एक वन है ताल वन, उस ताल वन में बहुत सारे ताल के फल है, आप उधर जाके ताल के फल खा सकते हैं। लेकिन हमारे एक बालक ने कहा नहीं, उधर तो एक बड़ा सा असुर है धीनुकासुर करके, वो बड़ा उत्पात मचा के रखा है, उधर कोई जाता नहीं है क्योंकि धीनुकासुर का डर से। तो बलराम ने कहा चिंता मत करो चलो हम चलते हैं। तो कृष्ण और बलराम सारे ग्वाल बाल के साथ गए और बलराम जी ने क्या किया, एक बड़ा ताल वृक्ष को एक पकड़ के वो हिलाने लगे, जैसे हिलाने लगे उनके ताल के फल नीचे गिरने लगे, तब उधर के जो एक बड़ा असुर था जिनका नाम था धीनुकासुर, ये धीनुकासुर ये पहले वो बलि महाराज के पुत्र के रूप में साहसिका करके एक पुत्र था बलि महाराज का, और दुर्वास मुनि को उन्होंने उनके प्रति अपराध किया था, क्यों, क्योंकि वो एक बार वो 10,000 गंधमाधन वृक्ष के ऊपर या गंधमाधन माउंटेन के ऊपर वो 10,000 पत्नियों के साथ 10,000 स्त्रियों के साथ रमण कर रहा था। तो उस समय दुर्वास मुनि उन्होंने देखा कि ये तो गधा जैसा है तो इसको गधे का रूप मिलना चाहिए करके उन्होंने शाप दे दिया। तो तब से वो बहुत सालों से ये तालवन में धीनुकासुर निवास कर रहा था। तो बलराम जी ये कर रहे थे तो धीनुकासुर आया, आके बहुत गुस्से में उन्होंने क्या किया, जैसे गधा जो है वो पीछे पीछे भागते हुए आता है और लात मारता है, तो वैसे बलराम जी को लात मारा, बलराम की छाती को जैसे लात मारा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बलराम जी तो सारे बल के स्रोत है। तो फिर से धीनुकासुर जोर से भागते हुए आया तो बलराम जी ने क्या किया, पीछे के दो पैर पकड़ के घुमा 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 के उन्होंने सबसे ऊंचा जो ताल वृक्ष है उसके ऊपर फेंक दिया और वृक्ष नीचे गिर पड़ा, और एक वृक्ष जो है दूसरे के वृक्ष के ऊपर नीचे गिर पड़े, इस प्रकार तालवन के बहुत सारे वृक्ष नीचे गिर गए और धीनुकासुर का वध हो गया। जैसे धीनुकासुर का वध हुआ, धीनुकासुर के बहुत सारे अनुचर थे, उनके फॉलोअर्स थे यानी छोटे छोटे गधे थे, वो सब भी आए उनको कृष्ण और बलराम को वध करने के लिए। कृष्ण और बलराम जैसे बच्चे लोग खेलकूद में खेल करते हैं उसी प्रकार उन सब गधों को वध कर दिया। वो तालवन जो है पूरा ताल फलों से भर गया और धीनुकासुर के बहुत सारे धीनुकासुर के लाशों से भी भर गया था। तो कितने ग्वाल बाल थे वो समझने लगी ये फल जो है भले ही हमको खाने का आ सकती है लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि धीनुकासुर का खून के द्वारा लाश भी पड़ा हुआ है, अशुद्ध हो गया है। लेकिन उधर के ब्रजवासी के जो निम्न कुल के जो लोग हैं वो आके तालवन को तालवन में आके ये वृक्षों का खाके गए। तो ये धीनुकासुर का वध होते ही सारे जितने भी देवता है कृष्ण और बलराम की खास लीलाओं को देख के, इस प्रकार असुरों को वध के लीला को देख के ऊपर से बारिश बरसाने लगे। तो ये वृंदावन लीलाओं में दो ऐसे असुर है जो कृष्ण वध नहीं करते बल्कि बलराम जी वध करते हैं, एक है धीनुकासुर दूसरा है प्रलम्बासुर। तो ये जितने भी असुरों का वध हुआ या दमन हुआ कृष्ण के द्वारा, ये कृष्ण के द्वारा जरूर हुआ है, लेकिन ये दो ही असुर बलराम जी के द्वारा वध क्यों किए गए हैं? क्योंकि एक तो एक कारण ये है कि बलि महाराज को वामन देव ने आश्वासन दिया था कि आपके वंशजों को मैं वध नहीं करूंगा, तो इसलिए ये बलि महाराज के वंशज थे, बलि महाराज की लाइन में आते थे, इसलिए देनुकासुर और प्रलंबासुर ये दोनों बलि महाराज के वंश में आने की वजह से भगवान स्वयं कृष्ण उन्होंने वध नहीं किया, तो इसे बलराम जी को वध करना पड़ा। ये तो ऐतिहासिक बाह्य कारण है, लेकिन वो अंतरंगिक कारण के बारे में श्री भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं। ये देनुकासुर सूचित करता है ऐसे अनर्थ जो आत्मा का ज्ञान के अभाव का जो अनर्थ है उसको सूचित करता है। जो आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है वो देहात्म बुद्धि में रहता है, यानी वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर से ही मुझे सुख मिल सकता है, इसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, वो बुद्धि जो देह को आत्मा समझता है, यानी वन हु थिंक्स दैट दिस बॉडी इज द सोल, देहात्म बुद्धि। तो ये दो प्रकार का देहात्म बुद्धि है, वन एक जो है शरीर को आत्मा मानना, दूसरा है आत्मा को शरीर मानना, दो प्रकार का देहात्म बुद्धि है। शरीर को आत्मा मानना तो मतलब शरीर मैं शरीर हूं, ये स्थूल शरीर हूं मैं, और ये स्थूल शरीर के द्वारा ही मैं सुख भोग सकता हूं, और मैं जितना स्थूल शरीर से आनंद भोग सकता हूं वही मेरा जीवन की गति है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वो बुद्धि जिस प्रकार हमेशा सोचता रहता है मैं इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या योजना बना के रखूं, कैसे कैसे अरेंजमेंट करूं ताकि मेरा शरीर जो है सुखी रहे, मेरा शरीर जो है आनंद में रहे, तो इस प्रकार की बुद्धि को देहात्म बुद्धि बोला जाता है। पहली प्रकार का देहात्म बुद्धि जो सोचना कि मैं इसी जगत में, इसी भौतिक जगत में, इसी जन्म में, इसी शरीर को मैं सुख दूंगा। दूसरा प्रकार का देहात्म बुद्धि है वो है आत्मा को शरीर समझना। भगवान भगवीता के छठे अध्याय में आत्मा की बहुत सारे परिभाषा देते हैं, बोलते हैं कि इधर छठे अध्याय में भगवान जहां भी आत्मा बोलते वो मन को सूचित करता है, मन या सूक्ष्म शरीर। तो इधर देहात्म बुद्धि का दूसरा मतलब है आत्मा को शरीर समझना, यानी ये सूक्ष्म शरीर को शरीर समझना, यानी मैं सूक्ष्म शरीर हूं। कुछ तो बोलते हैं हाँ मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं जानता हूं शरीर नहीं, मुझे मृत्यु आने वाला है और अगला जन्म होने वाला है, लेकिन अगला जन्म में जो है मैं आनंद भोगूंगा, कहां स्वर्ग में जाके भोगूंगा, यानी अभी भी इंद्रिय तृप्ति का भावना है लेकिन अभी तपस्या कर रहा है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वैदिक नियम पालन कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, ये ऐसा लग सकता है कि वो तपस्या कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो दूसरा प्रकार का देहात्म बुद्धि की वजह से, यानी ये सोचना कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, यानी एंजॉयमेंट इन मल्टीपल बर्थ, यानी मैं अगला जन्म में इंद्रिय विषय वस्तुओं का भोग करूंगा, सेवन करूंगा, कहां इधर नहीं, इधर तो फालतू लोगों का काम है, मैं जाके उधर स्वर्ग में भोगूंगा। जैसे कि कुछ लोग है, उदाहरणार्थ जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग है कि स्थूल इंद्रिय तृप्ति में भाग लेते रहते इधर भारत में, इंडिया में जन्म लिया बस जो मिला उसको एंजॉय करो, लेकिन कुछ लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, क्यों, ताकि मुझे अच्छा IIT में मिल जाए, ताकि मैं अमेरिका में जाके एंजॉय करेगा, अभी मेहनत कर रहे ताकि अमेरिका में एंजॉय करें, चाहे आप इधर भोगो भारत में या अमेरिका जाकर भोगो। तो ऐसे ही है एक प्रकार, एक कुछ लोग जो है इसी जन्म में इधर ही भोगूंगा और उधर। तो जो इस प्रकार की बुद्धि रखता है वो इस प्रकार की जो बुद्धि है देहात्म बुद्धि है ये मूर्ख है, असली तो उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, देयर इज नो इंटेलिजेंस, अबुद्धया। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास बुद्धि नहीं होता है, मूर्ख है, तो उसको क्या बोला जाता है, गधा बोला जाता है। इस जगत में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, पिताजी देखते हैं कि उनका लड़का जो है पढ़ नहीं रहा है, उसको नंबर नहीं आता है, क्या बोले तुम गधे हो, ये समझ में नहीं आता तुमको, अच्छा नंबर नहीं लाता, यानी गधा जो है मूर्खता का स्वरूप है, पर्सनिफिकेशन ऑफ फूलिशनेस। तो ये वो व्यक्ति जो शारीरिक स्तर में इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहता है वो मूर्ख है, तो इसलिए उसको गधा बोला जाता है। लेकिन ये जो आत्मा और शरीर के बीच में भेद को जानना और मैं शरीर नहीं मैं आत्मा करके जानना, ये जानकारी वो कृष्ण प्रदान नहीं करते। कृष्णा विल नॉट गिव द इंटेलिजेंस, विल नॉट गिव द अंडरस्टैंडिंग। ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है वो कृष्ण आके बोलते हैं, मैं ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होने का जो चीज है मैं नहीं करूंगा। जिस प्रकार उन्होंने धेनुकासुर का वध नहीं किया था, वो क्या करते हैं, वो बलराम जी के द्वारा ये देहात्म बुद्धि से हमको मुक्त कराते हैं कृष्ण। ही डज इट थ्रू बलराम, और बलराम जी कौन है, गुरु तत्व है। तो इट इज द गुरु हु एक्चुअली टेक्स अस आउट ऑफ दिस देहात्म बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि से मुक्त कराने का ये कार्य है गुरु करते हैं, क्योंकि संसार में सभी लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। देहात्म बुद्धि में फंसे हुए रहना मतलब क्या है, इंद्रिय भोग में फंसे हुए, मैं शरीर हूं, ये घर मेरा है, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरा है, ये शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, इनको देखभाल करना है, वैसे बहुत सारा योजना बना रहा है इंद्रिय सुख के लिए श्री देहात्म बुद्धि में फंस के। तो ये कृष्ण स्वयं आके नहीं नहीं तुम ये शरीर नहीं है तुम आत्मा होकर के बोलेंगे नहीं, वो कौन बोलते हैं, भक्त लोग आके बोलते हैं, गुरु आके बोलते हैं। ऐसा कृष्ण भले ही भगवद गीता का वर्णन करके भगवान अर्जुन को भगवद गीता छोड़ के जाते, भले ही वो अवतार लेने के बाद विग्रह को छोड़ के जाते, धाम छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये देहात्म बुद्धि में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो क्या सोचता है, ये जो भगवद गीता है वो रहने दो, उसको मैं पढ़ूंगा तो भी समझ में नहीं आने वाला है, और पढ़ेगा तो भी उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक गुरु है वो ये अंधकार में फंसे हुए लोगों को, देहात्म बुद्धि में फंसे हुए ऐसे गधों को क्या करते, एक जोर से झापड़ मार के बोलते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, योर स्पिरिट सोल। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जब भी शुरुआत में आप लेक्चर सुनेंगे, हर लेक्चर में इसी बात, यही ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं ये बात तो आ ही जाता है कि आप शरीर नहीं आत्मा। तो उधर एक भक्त श्री प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद जी आप हर लेक्चर में यही बात क्यों बोलते हो कि आप ये शरीर नहीं हो आप आत्मा। तो प्रभुपाद ने कहा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये गुरु का काम है, दिस इज द वर्क ऑफ द जॉब ऑफ द गुरु टू ब्रिंग द पीपल आउट ऑफ द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ, फ्रॉम द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ। इसलिए हमको भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, और बार बार इंद्रिय तृप्ति को करने से वो बोलते हैं कि मत करो इंद्रिय तृप्ति मत करो, कृष्ण की सेवा में लगो। तो ये क्यों है, क्योंकि ये गुरु का कार्य है। दिस इज व्हाट बलराम डस, कृष्णा डजंट इंटरफियर इनटू दिस। एक बार देहात्म बुद्धि से मुक्त होने का ज्ञान प्राप्त हो गया और बाकी जितने प्रकार के अनर्थ है ये वो सब अनर्थ है, वो अनर्थों को कृष्ण स्वयं या सहायता करेंगे। लेकिन ये जो है धेनुकासुर जो हमारे हृदय में फंसा हुआ है देहात्म बुद्धि, दैट कृष्ण हैज गिवन इट टू द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट ही डज इट थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए जो भक्त लोग जो धेनुकासुर ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, गुरु का शरण ग्रहण करना होगा। वन हैज टू टेक शेल्टर द स्पिरिचुअल मास्टर। ये गुरु का शरण ग्रहण किए बिना, उनकी आज्ञा को पालन किए बिना हम ये देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते। वी जस्ट कैनॉट गेट आउट ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस। और एक है प्रलंबासुर, प्रलंबासुर के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे क्योंकि प्रलंबासुर भी एक असुर है जो गुरु ही वध करते हैं, बलराम जी वध करते हैं, वो कृष्ण वध नहीं करते। ये प्रलंबासुर जो है ये स्त्री संघ या स्त्रियों के लिए पुरुष संघ करने की जो भावना है, उनके साथ रमण करने की जो प्रवृत्ति है उसको सूचित करता है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर क्या कर रहे थे, वो बलराम जी को वो दूर लेके जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि बलराम जी दूर लेके जाऊंगा और उनको वध कर दूंगा, लेकिन बलराम ने क्या किया, प्रलंबासुर के सर के ऊपर उन्होंने मुक्का मार के उनको मार दिए। तो ये दो चीजें, एक है स्त्रियों का संग करने की प्रवृत्ति, स्त्रियों के लिए पुरुष को संग करने की प्रवृत्ति, और दूसरा ये देहात्म बुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। इससे अगर मुक्त होना है व्यक्ति को ही हैज टू सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे कोई व्यक्ति गुरु का आज्ञा पालन करना पालन नहीं करता है या पालन करना छोड़ देता है, उसके अंदर तुरंत ये देहात्म बुद्धि आ जाता है, नेचुरली इट कम्स, ही स्टार्ट सीइंग आई एम दिस बॉडी। अगर भले वो कितने भी वो उनके अंदर अनर्थ कितने भी हो, अगर कोई व्यक्ति गुरु का शरण ग्रहण करता है, गुरु के द्वारा बोला गया सारे नियम कानून को पालन करता है, तो वो व्यक्ति जो है ध्यात्म बुद्धि से आसानी से मुक्त हो सकता है। कितना भी शास्त्र अध्ययन किए हो, कितना ये प्रकार के पांडित्य को प्राप्त क्यों ना किया व्यक्ति, कितना भी दक्ष क्यों ना हो भौतिक कार्य करने में या अलग अलग प्रकार की तपस्या करने में हो या कोई यज्ञ की विधि विधाओं को पालन करने में दक्ष भी क्यों ना हो, अगर गुरु आज्ञा पालन नहीं करता है, गुरु का शरण नहीं ग्रहण करता है, वो देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खास करके भारत में, जो बहुत दक्ष है यज्ञ करने में, दक्ष है और सभ्यता भी उनके अंदर है और पांडित्य भी है, उपनिषद के श्लोकों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वही उपनिषद कहता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरु का शरण नहीं ग्रहण करते, दीक्षा स्वीकार नहीं करते, इसलिए क्या होता है, वो देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते। अभी वे सोचते हैं कि मेरा परिवार है, ये है, मेरा आसक्ति है, उनको देखभाल करना, ये शारीरिक सुख चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा घर, इस प्रकार सोचते रहते हैं। दोज पीपल आर सरेंडर्ड, जो कृष्ण का गुरु का शरणागत हुए। हम देखे कि श्रील प्रभुपाद जी जब गए थे उधर पाश्चात्य देश में, अमेरिका में, उस समय जो उनके शिष्य बने थे, उनका शरण ग्रहण किए थे, वो कौन थे, नशा करने वाले थे, उनको कृष्ण के बारे में जरा सा भी ज्ञान था ही नहीं। एक बार एक सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी कह रहे थे कि जब वो श्री प्रभुपाद जी का शरण ग्रहण किए, तो वो कहते थे कि हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए मानते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा, अगर प्रभुपाद जी कुछ और कहे होते तो हम कुछ और मानते थे। तो हम बोलते थे हम भगवद गीता जो है सारे शास्त्रों का सार है करके क्यों बोलते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा। हम किताबें इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा। हमको अस्तित्व में इन चीजों में विश्वास था ही नहीं। उनका कहना है था कि हमको मालूम ही नहीं था भगवद गीता क्या होता है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, कृष्ण क्या है, वो कुछ मालूम नहीं था। बिकॉज प्रभुपाद टोल्ड क्रिश्चियन सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, वी ऑल्सो टोल्ड क्रिश्चियन सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। इतना विश्वास था प्रभुपाद जी के प्रति, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट नोइंग। अभी तो कम से कम मालूम है कि भगवद गीता है, ये इस पे विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा है, सारे शास्त्रों का सार है, भागवत है, सुखदेव गोस्वामी, ये सब चीजें हमको मालूम है। लेकिन उधर लोगों को बताते कि वी जस्ट वर नॉट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, बट वी वर नोइंग, हमको मालूम था श्रील प्रभुपाद जी जो भी बोल रहे हैं वो सही है, वो जो बोल रहे हैं हमको वही करना है। तो बिकॉज उनके अंदर इस प्रकार की श्रद्धा थी, गुरु के प्रति इतना शरणागति की भावना थी, वो लोग इतना इतना महान कार्य कर पाए। वो शारीरिक स्तर में थे ही नहीं जब उन्होंने गृहस्थ परिवार को, जब प्रभुपाद जी ने कहा भेजा था इंग्लैंड भेजा थे, उस समय कितना चार गृहस्थ के परिवार थे उनके पास, उधर क्या करेंगे, उनका कैसे खाने को रहने का क्या जगह, कुछ नहीं मालूम था। जैसे रोड साइड टेंट डाल के रहते तो वैसे रहने लगे, यानी पूर्ण तरीके से आत्मा के स्तर में निवास कर रहे थे, कंप्लीटली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल। देहात्म बुद्धि से पूर्ण तरीके से मुक्त हो गए थे। मेरा शरीर का कौन देखभाल करेगा, इसका चिंता, कोई चिंता था ही नहीं। क्यों, ये नहीं कि वो उपदेशों के पंडित थे या पूरा गीता भागवत पे विद्वान थे, गीता भागवत भी नहीं जानते थे वो, कुछ नहीं जानते, क्योंकि गुरु का शरण ग्रहण किए थे। बिकॉज दे हैड सच अ फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर दैट दैट वाज अ रीजन, वो एकमात्र कारण है वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हुए। और जैसे लोग आगे आगे चलते गुरु का शरण को त्याग कर दिए, संसार से दूर हो गए और नियमों को पालन करना, गुरु के नियम का पालन करना छोड़ दिए, तो फिर से वो देहात्म बुद्धि आ गया। भले वो सारे शास्त्रों के अभी विद्वान हैं, बड़े बड़े लेख भी लिख रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्या भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु का शरण को त्याग करने की वजह से क्या हो गया, तो उनका देहात्म बुद्धि फिर से वापस आ गया। ये प्रत्यक्ष हमारी संस्था में लोगों में देख सकते हैं, संस्था इन्हें अपने आजू बाजू भक्तों में भी देख सकते हैं और अपने अंदर भी देख सकते हैं। जिस समय व्यक्ति जो है गुरु का शरण ग्रहण नहीं करता है, तो गुरु का आध्यात्मिक गुरु से दूर रहना चाहिए। भले ही वो कितना भी बड़े बड़े कार्य क्यों ना करे, वो कभी भी व्यक्ति जो है ये देहात्म बुद्धि को त्याग नहीं कर सकता। बाकी सब चीजों को कृष्ण के बल से इधर उधर से कुछ हो सकता है, होने की संभावना है, लेकिन ये देहात्म बुद्धि दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये है देनुकासुर के बारे में हमने कुछ बातें कहा। अभी हम और एक असुर का चर्चा करेंगे, अनर्थ का चर्चा करेंगे, वो है कालिया। कालिया नाग का दमन, कालिया दमन, ये बहुत अद्भुत लीला है भगवान का। ये मालूम करना चाहिए जो कालिया नाग है ये स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे और एक ऋषि उसी आश्रम में पहुंचे जिनका नाम था अश्वशिरा। जैसे अश्वशिरा ऋषि पहुंचे वेदशिरा ऋषि के आश्रम में, वेदशिरा ऋषि ने क्या किया, नहीं नहीं आप इधर नहीं कर सकते हो तपस्या, मैं कर रहा हूं, उन्होंने गुस्से से बोला। तो तब अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि आप बिना कारण के, ये तो आश्रम, तो ये तो जगह तो आपका नहीं है, ये जंगल तो जंगल सबका है, आप बिना कारण के मैं तपस्या करने के लिए आया, आप एक सांप जैसा मेरे ऊपर डस रहे हो गुस्से से, तो मैं आपको शाप देता हूं कि आप सांप बन जाओ। तब ये जो वेदशिरा ऋषि जो है वो सांप बन गए। कद्रु जो उनके दक्ष के जो पुत्री है कद्रु, उनसे ही सारे सांप उत्पन्न हुए थे, जो उनसे ही कालिया का नाग का उत्पत्ति हुआ। तो ये कालिया नाग सारे नागों को रोज गरुड़ आते थे और बहुत सारे सांपों को वध करते थे, मार देते थे, कुछ सांप को खा लेते थे, ऐसा करते थे। तो ये गरुड़ का इस प्रकार का चीज देख के, गरुड़ तो भगवान का वाहन है, सारे सांपों ने गरुड़ से मीटिंग करके कहा कि आप देखो इस प्रकार अननेसेसरीली मारो मत सांपों को, हम आपको हर महीना आपको ऑफरिंग्स देंगे, जो भी चाहिए आपको सब हम अर्पण करेंगे। तो गरुड़ ने बोला ठीक है, लेकिन सारे सांप जो है जो जो आप अर्पण करना था सब अर्पण कर रहे थे गरुड़ जी को, लेकिन एक कालिया अपना जो ऑफरिंग वो नहीं कर रहा था, साथ साथ में जो गरुड़ जी को अर्पण करना था बाकी सब सांपों का जो ऑफरिंग्स थे वो भी खा लेता था ये कालिया। तब गरुड़ को बहुत गुस्सा आया और कालिया से उनका टक्कर हुआ। तो कालिया ने क्या किया, दूर से उन्होंने विष को गरुड़ के ऊपर फेंका, लेकिन गरुड़ तो भगवान का बाहर है, उनको क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गरुड़ स्वयं जाके उन्होंने कालिया को ढसने लगे और चोंच से मारने लगे और उनके पंख से उनको कालिया को बहुत घबराहट पहुंचा गरुड़ की शक्ति देखे। तब कालिया नाग ने क्या किया, तुरंत आके ये कालिंदी में ऐसा है कि यमुना नदी बह रही है, वो यमुना नदी की दक्षिण की ओर एक ऐसा 8 मील जो लंबा एक तालाब जैसा बन गया था, जैसे लेक, ऐसा नदी का स्वभाव होता है कि नदी तो बहता रहता है लेकिन कहीं कहीं ये नदी जो है ऐसा बड़ा सा हो जाता है, वो बड़ा सा जगह को मेन फ्लो में नहीं रहता है, कनेक्शन तो नदी के साथ रहता है तालाब का, लेकिन वो नदी का जो पानी है वो तालाब के अंदर जाके बहते हुए नहीं जाता है, वो मेन जो स्ट्रीम है उसके अलग होके एक बड़ा सा तालाब 8 मील बड़ा तालाब बन गया था। तो उस कालिंदी में शबर ऋषि सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उस समय गरुड़ जी को कभी ऐसा इच्छा होता था मैं जाके मछली खाऊं, तो वो उधर जाके मछली खाने लगे। तो सौगर ऋषि को देखा कि क्या है, आके मछली खा के जाता है बेचारा, मछलियों का क्या कसूर है। फिर उन्होंने गरुड़ जी को शाप दिया कि आप कभी भी इधर नहीं आ सकते हो, मछलियों को वध मत करो। तब आपको मालूम है कि गरुड़ जी तो कृष्ण का वाहन है, भगवान का वाहन है, भगवान का वाहन होने के नाते बड़े वैष्णव है, और सौगर ऋषि वैष्णव के प्रति अपराध करने की वजह से क्या हुआ, वो बड़े तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, वो एक समय में उन्होंने तपस्या करते करते उन्होंने देखा दो मछलियां जो है वो संग कर रहे हैं। वो देख के उनको बहुत आनंद आया, अरे मछलियां देखो कितना आनंद में है, मैं क्या कर रहा हूं इधर, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उनको मन में इस प्रकार की कामुक भावना आया। क्यों कामुक भावना आया, तो उसकी वजह से वो राजा के पास जाके उन्होंने उनकी राजा के 50 पत्नियों से विवाह किया। तो कहां उनका ऐसा विचार था कि मैं तपस्या करना चाहता हूं, जंगल में तपस्या करूंगा तो भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन पानी के अंदर मैं तपस्या करूंगा ताकि डिस्टर्बेंस ही ना हो, ताकि मैं इसी जन्म में योग सिद्धि प्राप्त कर भगवान के धाम में जाऊं। तो उनकी ऐसी विचार थी, मैं किसी के साथ भी संपर्क नहीं रखना चाहता, एकांत में तपस्या करना चाहता हूं। पानी के अंदर जाके तपस्या करने की इतनी शक्ति थी, लेकिन इतना तपस्शक्ति होने पर भी, तपस्या की इच्छा होने पर भी, लेकिन वैष्णव अपराध करने की वजह से क्या हुआ, उनको इस प्रकार की कामुक विचार आया, उनको फिर से वो वापस 50 स्त्रियों के साथ विवाह करके विवाह करना पड़ा, राजा की कन्या व पुत्रियों से विवाह करना पड़ा। तो ये तो खैर अलग स्टोरी है, लेकिन गरुड़ जी को उन्होंने शाप दिया था कि आप इधर नहीं आ सकते हो, ये कालियों को ये बात मालूम था, इसलिए क्या कालिया गरुड़ से बचने के लिए क्या किया उन्होंने, अपने जो सांपों की राज को त्याग करके इधर वृंदावन में एक कालिंदी में आके छुप गए, यमुना नदी में आके वो छुप गए कालिया। तो उस समय से कालिया उधर निवास करती बहुत सालों से। तो कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, अभी ग्वाल वालों के साथ सब लोगों के साथ वो थोड़ा जंगल में दूर की ओर जा, अंदर जंगलों के अंदर की ओर जा रहे हैं, वृंदावन के जंगलों के अंदर की ओर जा रहे हैं। तो एक दिन कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों को कहा कि अभी हम चलेंगे यमुना के तट के ऊपर कालिंदी के पास, उधर घास बहुत नरम घास है, बहुत फ्रेश घास है, और साथ साथ में वो तो उधर गाय चरते रहेंगे और हम लोग उधर जो है कालिंदी में खेल सकते हैं, नदी में खेल सकते हैं, उधर का रेती भी बहुत नरम रेती है, हम चलेंगे। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा चलो चलो, लेकिन अभी भी नए नए जा रहे हैं तो इतना दूर चलते चलते उनको बहुत थर्स्ट, उनको बहुत प्यास लगा, और जैसे उधर पहुंचते कृष्ण का बस पूछे बिना सभी लोग गए, तुरंत वो कालिंदी का पानी पीने लगे, जैसे पानी पिए सभी लोग मर गए। तो उधर आचार्य कहते हैं भगवान जो है उधर उनका अस्तित्व में मृत्यु नहीं हुआ है, क्योंकि ये योग माया बल के अनुसार, योग माया शक्ति के द्वारा भगवान ने क्या किया था, उनके जो प्राणवायु उनका संचलन बंद किया था। ऐसा नहीं कि उनका आत्मा है, शरीर है, उनका शरीर आत्मा, शरीर से अंदर से आत्मा चला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका प्राणवायु का संचलन बंद हो गया था, क्योंकि कृष्ण के पार्षद होने के नाते वो सनातन है, तो ये उनका शरीर के अंदर आत्मा है, इस प्रकार की जीव नहीं थे वो, लेकिन उनका प्राणवायु का संचलन बंद हुआ था। तब कृष्ण ने देखा कि अरे सभी लोगों का इस प्रकार का मृत्यु हो गया, तो क्या हुआ, मेरे पार्षदों का, मेरे भक्तों को कुछ तकलीफ पहुंचा, तो तुरंत गए, और कृष्ण ने जैसे उन्होंने उन सब ग्वाल बालों के ऊपर नजर डाली तो उनके अंदर फिर से वापस जाना आया। तब कृष्ण ने सोचा इधर से एक भयंकर सा कुछ तो प्राणी है, और इतना हद तक ऐसा बोला गया है कि कोई भी पक्षी भी उड़ के जाता था कालिंदी के ऊपर, कालिया जहां निवास करता था, वो इतने भयंकर से उनका पॉइजन जहर था, जिसकी वजह से वो इतने धुआं फेंकता था पॉइजन का, क्या उसका विष का, जहर का जो धुआं इतना भयंकर था कि पक्षियां भी मर के नीचे गिर पड़ते थे। तो कृष्ण ने क्या किया, मैं जाऊंगा, मैं बाजू में देखे कदम वृक्ष है, वो कदम वृक्ष के ऊपर अपना चरण रखे, और कृष्ण जो है यमुना में कूद पड़े। ऐसा बोला जाता है कि ये जो कदम वृक्ष है वो उसके ऊपर गरुड़ ने कुछ अमृत डाल दिया था, इसलिए वो एकमात्र कदम वृक्ष जिंदा था, बाकी सब विष के प्रभाव के, जहर के प्रभाव की वजह से सब मर गए थे। तो कुछ लोग ऐसे बोलते, कुछ आचार्य कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने उस कदम वृक्ष के ऊपर अपना चरण रखा तो वो वापस जीवित हो गया, तो कृष्ण नीचे कूद पड़े। जब कालिया यमुना में कृष्ण कूद पड़े तो कालिया को मालूम नहीं पड़ रहा था कि कृष्ण इधर आए, और यमुना में जैसे कृष्ण कूद पड़े तो कृष्ण कालिया को ललकारने लगे कि आप आओ, आके मेरे से युद्ध करो। तो कालिया को जैसे मालूम पड़ा, एक छोटा सा बालक आया मुझसे युद्ध करने के लिए, कौन है, जाके देखने के लिए कालिया आए, और जैसे कृष्ण कूद पड़े ये जहरीली पानी में, सारे जितने भी ग्वाल बाल थे उन सबके अंदर ऐसा कृष्ण के प्रति चिंता होने लगी, वो बोलने लगे कि कृष्ण क्यों कूद रहे हो, बहुत खतरनाक है, उनके अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उभर के बाहर निकल के आया, और कुछ तो बोलने लगे इधर तो बहुत बड़ा एक सांप है, वो बहुत क्रोधित सांप है, तो इससे बहुत खतरनाक है। तो एक एक करके एक एक कृष्ण को चेतावनी देने लगे, लेकिन उस समय कालिया जैसे प्रकट हुआ सभी लोगों को इतना घबराहट हुआ, तो कालिया ने क्या किया, वो तुरंत आके कृष्ण को अपने कॉइल्स को क्या बोलेंगे अपने शरीर के साथ उनको दबा के रखा। कृष्ण जो बीच में फंस गए थे और अपने फणों से जो पॉइजन है जहर है वो कृष्ण के ऊपर चेहरे के ऊपर डालने लगी कालिया। तो ये सब को देख के सारे जितने भी ग्वाल बाल थे वो सबके नजर में गर्भावट होने लगे। तो ऐसा बोला जाता है कि कालिया भले ही असुर का रोल कर रहा है, कृष्ण को ऐसा लग रहा था जब कालिया जहर को फेंक रहा था ऐसा लग रहा था कृष्ण जो है कालिया उनको चुमन दे रहा है, और कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि जो वो कालिया मुझे आके आलिंगन कर रहा है। कुछ कृष्ण को जरा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कालिया सोच रहा है कि मैं उनको जहर फेंक रहा हूँ, उनको मार दूंगा, उनके उनको मुझे दबा के रखा है आलिंगन, ये अपने अपने शरीर के साथ मुझे कृष्ण का शरीर को दबा के रखा है, लेकिन कृष्ण को जरा सा भी ऐसा लग नहीं रहा था। तो जैसे कुछ बाल बालों को इस बात पता लगा तो सब लोग बाल बाल सोचने लगे, अरे अगर बलराम होता तो उसको कृष्ण को जाने नहीं देता, भी क्या हो गया, चलो जल्दी जाके हम कुछ किसी को बुलाएंगे। तो सब लोग वृंदावन खबर पहुंचाए कि कृष्ण जो इस प्रकार कालिया के अंदर कूद पड़ा। तो नंद महाराज यशोदा को जैसे मालूम पड़ा, बलराम जी को मालूम पड़े, सब लोग आ गए, ब्रजवासी सब लोग आके देखने लगे कि इधर कृष्ण जो है वो कालिया के अंदर फंसा हुआ है, कालिया के शरीर के अंदर फंसा हुआ। जैसे देखते ही यशोदा और नंद महाराज बेहोश हो गए और बलराम जी को बहुत उनका भी विचलित हो गया उनका मन, अरे कृष्ण इतने परेशानी में खतरे में है। तो ये कृष्ण इस प्रकार की असुरों की वध करने की लीला कुछ कारणों की वजह से करते हैं। पिछली बार हम आए थे तो ये असुरों की वध करने की लीलाओं के बारे में उनके कारणों के बारे में चर्चा किए थे। करीबन 8 कारण हम पिछली बार चर्चा किए थे, आपको अगर याद है तो। तो सबसे पहला ऐसे कारण माना जाता है असुरों को वध करने का कि हम सबको मालूम है मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण ये है, ये प्रसिद्ध कारण है, मुख्य से ज्यादा प्रसिद्ध कारण ये है कि पृथ्वी असुरों के भार से बहुत परेशान थी, वो इसलिए गाय का रूप धारण की ब्रह्मा जी के पास गई, इसलिए पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा, जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं गुणशेखर आळ्वार कि जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, जयति जयति देवो विष्णुवंश प्रदीप, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंद, पृथ्वी का जो भार को नाश करने के लिए भगवान असुरों को वध करते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है असुरों की पाप की वजह से वो भार को सहन नहीं कर पा रही, ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण है भगवान असुरों को वध इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए असुरों को वध करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, ये तो प्रसिद्ध भगवद गीता में प्रसिद्ध कारण है। और तीसरा कारण ये है क्योंकि वो भक्तों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को परित्राण करने, क्योंकि असुर लोग क्या करते साधुओं को भक्तों को परेशान करते हैं, इसलिए साधुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वो भगवान असुरों का वध करते हैं। और एक कारण है कि जब भगवान असुरों को वध करते हैं बड़ा दुमादार युद्ध होता है, वो युद्ध होता है तो कभी कभी भगवान हारते रहते हैं, कभी कभी भगवान जीतते हैं, असुरों को कभी पावर बढ़ जाता है। और ऐसा जैसे आपने कुछ फिल्मों में हीरो और विलन का फाइटिंग देखे होंगे तो उसमें क्या होगा, कभी हीरो जो है वो अभी बस अभी पूरा विलन जो है हीरो को धक्का देके कहीं उसको मारने वाला रहता है, कोई पुराने पिक्चर अभी पता नहीं अभी का पिक्चर में कैसा है, कभी ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि वो बस अभी ट्रेन की पटरियों के ऊपर चल रहा है फाइटिंग और विलन जो है वो हीरो को ट्रेन की पटरियों के ऊपर आके बांध रहा है और एक ट्रेन आ रहा है और सबको घबराहट होता है, अचानक जैसे ट्रेन आने वाला है वो जो हीरो है वो बच जाता है और विलन को डाल देता है तो एक्साइटमेंट होता है फाइटिंग में। तो वैसा जो एक्साइटमेंट में तो जब हीरो जीतता रहता है तो उस समय सब लोग बोलते हैं वाह वाह उसको ऐसा मारो, ओ पीछे से आ रहे उसको मारो, हाँ, तो ऐसे भक्तों को तो एंटरटेनमेंट होता है फाइटिंग भी तो वैसे जब फाइटिंग होता है तो भक्तों के अंदर जो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको आनंद पहुंचाने के लिए, तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कभी कभी भगवान, असुरों को वध करने की लीलाएं। हाँ, जो भक्तों के द्वारा उनका भगवान की शाबाशी होता है ना, वाह भगवान ने आपने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा करना चाहिए था, ये सब चीजें होता है। ये हुआ था असलियत में पृथ्वी के शुरुआत में, सबसे पहले यही हुआ था फाइटिंग हुआ था जब सृष्टि के शुरुआत में, जैसे सृष्टि ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, जो उस समय एक और एक एक सबसे ब्रह्मा जी ऑलमोस्ट एक 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 ऐसे जीव है जो बहुत सारे मनवंतर तक, बहुत सारे ब्रह्मा जी के बहुत सारे जीवन तक जीवित रहते हैं, वो है जाम्बवान। ये जैसे भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि किए, उसके साथ ब्रह्मा जी के दो कान से दो गंदगी के टुकड़े पड़े, जो कान में गंदा होता है ना वो नीचे गिर पड़े, तो दो जो है दो असुर के रूप में परिणित हुए। यानी ब्रह्मा जी के समय दो असुरों का सृष्टि हुआ था, एक नाम है मधु, दूसरा नाम है कैटभ। मधु और कैटभ, मधु कैटभ आ रहे, कुलशेखर आलवार भगवान को बोलते मधु कैटभ आ रहे, जो मधु और कैटभ के शत्रु। वो दोनों जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो सोचने लगे, देखो ये भगवान ने हमको उत्पत्ति किया है, लेकिन इसी के वजह से हमको शक्ति मिला है, लेकिन हम उनको मारना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो है तब तक हम भोग नहीं सकते। इसलिए उन्होंने से भगवान से प्रार्थना किया, भगवान तपस्या किया। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए तुमको, क्या वरदान चाहिए? तो बोले, हमको ये वरदान चाहिए कि मैं हम आपसे युद्ध करना चाहते। तो भगवान ने बोला, क्या मुझे मारना चाहते हो, मुझे युद्ध कर मुझसे युद्ध करना चाहते हो? बोला हाँ, लेकिन और एक वरदान चाहिए, क्या है? आप हमें जहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, ये आठ तत्व जहां हैं, आप उधर हमको वो मार नहीं सकते हो, जहां ये चीजें नहीं है उधर आप मार सकते हो। यानी ये जो मधु और कैटभ वो सोचते थे, क्योंकि भौतिकवादी थे, भौतिकवादी यही सोचते कि भौतिक तत्व ही है, आध्यात्मिक कुछ है ही नहीं, तो वो सोचते थे जहां ये आठ तत्व है उधर हमारा मृत्यु नहीं होगा, तो कहीं नहीं होगा। तो भगवान के उनके साथ युद्ध होने लगा, बड़ा धुमाधार युद्ध हुआ। कहीं भगवान को वो लोग मारते थे तो भगवान जो इनको ऊपर परास्त परास्त करते थे, ऐसा हो रहा था। तो ये जाम्बवान इस युद्ध को देखा, जाम्बवान युद्ध को देख के वाह वाह कूद रहा था, नाच रहा था, वाह भगवान ऐसे मारो, अरे पीछे से आ रहे उसको मारो। तो ये जो फाइटिंग सीन जाम्बवान देख रहे थे लुकिंग एट दिस फाइटिंग सीन। तब ये बात जब मधु और कैटभ को भगवान ने क्या किया, सब थोड़ा सा फाइटिंग सीन दिखाने के बाद उन दोनों को लिए, अपने जो जांग है अपने थाइस है उसके ऊपर बिठाए, भगवान की जो थाइस है उसके अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तो होता नहीं है, उधर रख के उनको मार दिए हाथ लगा के। तब ये सब फाइटिंग हुआ, जब भगवान ने सोचा अरे कौन है भाई, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा था जिनसे तो देखा जाम्बवान, तो जाम्बवान से प्रार्थना है तुमको क्या वरदान चाहिए? तब जाम्बवान ने कहा, बस ऐसे ही फाइटिंग सीन में बार बार देखना चाहता हूँ तो इसलिए हर भगवान के अवतार हैं जाम्बवान, उनके सारे युद्धों को देखा तो असुरों को वध करने के पीछे और एक कारण, ये असुरों को वध करने का चौथा कारण है, भक्तों को आनंद देना चाहता। ये असुरों को वध करने का और एक पांचवा कारण ये है, असुरों का जब वध होता है उनका उद्धार होता है, ही वॉन्ट्स टू डिलीवर देम, उनकी भलाई के लिए। ये पांच कारण है और असुरों को वध करने का, और छठा एक कारण है वो ये है कि भगवान जब असुरों को वध करने के समय अपने आप को खतरे में डालते हैं, जब अपने आप को खतरे में डालते हैं तो उनके सारे भक्त है, वो भक्तों के अंदर उनके प्रति जो प्रेम की उद्वेगना है, वो उद्वेगना की जो तीव्रता है वो बढ़ जाता है और बाहर उभर के बाहर प्रकट होता है। जब ऐसे कृष्ण है साधारणता है, यशोदा माई नंद महाराज सोच रहे हैं ठीक है भाई ये तो खेल रहा है चलो ये तो उनसे प्रेम करेंगे, लेकिन जब बच्चा खतरे में रहता है तो वो माता पिता का प्रेम ज्यादा हो जाता है, भले ही वो बच्चा जो है अभी माता पिता से झगड़ा करके आया, कुछ हो गया, मम्मी पापा बोलते बस घर से बाहर निकल जाओ तुम, वो करो वो करो, सब झगड़ा हो गया। ये साधारणता इस जगत में भी देखते हैं, जो वो जब बच्चा बाहर जाता है, बाहर जाके उसको कुछ मान ली कुछ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया कोई व्यक्ति, जैसे माता पिता को खबर पहुंचता है कि आपका बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या करेंगे माता पिता वो तुरंत भाग के हॉस्पिटल में आएंगे, अरे बेटा क्या तुम घर से चला गया, उसके अंदर प्रेम बढ़ जाता है, अभी तो झगड़ा करके बोला घर से बाहर निकल जाओ तुम बुद्ध हो तुम नालायक हो सब बोले थे, लेकिन जब खतरे में आता है बच्चा तो तुरंत उनके माता पिता का जो है उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो वैसे ही भगवान भी अपने आप को खतरे में डालते हैं, खतरे में क्यों डालते हैं? ताकि भक्तों के अंदर उनके प्रति प्रेम की जो भावना है वो उनकी प्रेम का उत्कर्ष है और बढ़ जाए, और साथ साथ में वो बाहर उभर के बाहर निकालना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और भी हमने कारण को भी ये चर्चा किया, ये अनर्थों का चर्चा। तो भगवान ऐसे कुछ लीलाएं हैं जो आध्यात्मिक जगत में नहीं कर सकते, वो भौतिक जगत में आके करते हैं। वे असुरों की वध इसलिए करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का फाइटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सभी उनके भक्त हैं, सभी उनके मित्र हैं, वो किसके साथ झगड़ा करेंगे? यू कैन नॉट फाइट उधर। तो अपना जो बल का जो ऐश्वर्य है, बल नामक ऐश्वर्य, हमको मालूम है छह प्रकार के ऐश्वर्य है, छह प्रकार के ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य क्या है? बल, स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में तो भगवान जो अपनी सुंदरता को प्रकाशित कर सकते हैं ना, ये मैनिफेस्ट इज ब्यूटी, सब लोग भगवान का सुंदरता को आस्वादन कर रहे, उनकी ऐश्वर्य का भी आस्वादन कर रहे, उनका यश का भी गुणगान हो रहा है। लेकिन ये जो बल है, जिसके पास बहुत बल होता है ना, वो शांत नहीं बैठ सकता, वो दिखाना चाहता है मैं भी बलवान हूं, उनके हाथ में हमेशा खुजली रहता है, खास करके वो दिखाना चाहते हैं, फाइटिंग करके दिखाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे थोड़ा सा बड़े होने लग जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा बल आता है, वो अपने माता पिता के ऊपर दिखाना चाहते हैं बल, क्योंकि बाहर जाएगा तो मार खा के आएगा, इधर तो हाथ कुछ कुछ जाके पिताजी को मारेंगे, ऐसा करेंगे, खास मम्मी को जाके मारेंगे, उनको बल दिखाएंगे। तो वैसे ही भगवान जो है वो, मैं किसके ऊपर बल दिखाऊं, अगर मैं किसी जुद करूं सच में, तो तब वो सोचते हैं कि जैसे उनके मन में इस प्रकार की इच्छा आता है, तो भक्तों की योजना ऐसा बन जाता है कि भगवान की इच्छा को पूरा करें। तो जय विजय ने क्या किया, अपनी भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो संकल्प किए, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके अंदर इच्छा आया। तो भगवान ने देखा जय विजय के अंदर मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके अंदर इच्छा है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक ऐसा सुंदर योजना बनाया। क्या है वो योजना? ये है कि चार कुमार आए, चार कुमार आके क्या किए, जय विजय को शाप दिए। जय विजय ने भगवान अपने आप उनके परमात्मा के रूप में उनके अंदर ऐसी प्रेरणा दी कि आप जय विजय को रोक दो। असल में जय विजय तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भगवान की योजना से उन्होंने ऐसा कार्य किया ताकि चार कुमारों के प्रति उनका अपराध हुआ, चार कुमारों ने उनको शाप दे दिया। ये जो कार्य है ये आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ वासियों का इस प्रकार कार्य नहीं हो सकता, आप भौतिक जगत में रहने लायक होकर के उन्हें शाप दे दी। तब भगवान ने क्या कहा जय विजय को, ठीक है आपको सात जन्म मेरे भक्त जैसा जीवन चाहिए भौतिक जगत में, या तीन जन्म मेरे असुरों का, मेरे शत्रु के रूप में जन्म चाहिए। तो जय विजय ने क्या किया, नहीं आपके ज्यादा विरह नहीं चाहिए हमको, तीन जन्म ही चाहिए, तीन जन्म का खत्म करना चाहते हैं, भले असुर का जन्म क्यों ना हो, हम सात जन्म तक आपका विरह को सह नहीं कर सकते, इससे तीन जन्म उनका असुर का रूप प्राप्त मिला। ये सब के पीछे कारण क्या था, भगवान जो है अपनी जो शक्ति है वो दिखाना चाहती, वॉन्टेड टू शो टू द होल वर्ल्ड। तो ये सातवां कारण हुआ। और आठवां कारण क्या है, भगवान इन असुरों को वध करते हुए इन लीलाओं को इसलिए करते हैं साधकों के लिए, ताकि ये लीलाओं को श्रवण करते हुए हमारे उदर में जो इस प्रकार के असुर है, ये अनर्थ है, उसको हम नाश कर सकते हैं। खास करके इस कालिया दमन लीला में भगवान ने ये अपने आप को खतरे में डाल के, देखिए इतना भयंकर सा सांप है, उसको बस उसका पॉइजन जो है, उसका जहर जो है, उसका जो इतना भयंकर था कि ऊपर से भी पंछी उड़ता था वो गिर के मर जाता, वैसे सांप का एकदम नजदीक जाके उनके बाहों में फंस गया भगवान, और सांपों का जो पॉइजन है वो उनके चेहरे के ऊपर आ रहा है, और सारे व्रजवासी इस बात को देख रहे, और उनके अंदर इतने अपने आप को खतरे में डाले कि व्रजवासियों आश्चर्य देखते सब बेहोश होते थे, वो कृष्ण का विरह को सह नहीं पाते थे, कभी कभी सोचते थे अरे कृष्ण का मृत्यु कैसे हो सकता है, हम कैसे जिएंगे, वो विचार करते हुए लोगों का बेहोश होता था। तो इस प्रकार व्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम की महिमा जो है सारा जगत को इस कालिया दमन लीला में दिखाया, कृष्ण अपने आप खतरे में डाल के। तो ये हुआ। तो कुछ समय के बाद अभी कृष्ण सोचने लगे और इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अभी सच में करेंगे तो कुछ और कर देंगे, वो खुद आ जाएंगे, खालिया इसमें कूद जाएंगे, फिर उनका भी खतरा होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर को ऐसा विस्तार करने लगे, जैसे विस्तार करने लगे कालिया का जो शरीर है पकड़ा हुआ, उनके कालिया जो अपना कॉइल्स बना के कृष्ण हो गए वो थोड़ा सा लूज हो गया, जैसे कृष्ण फ्री हो गए तुरंत जो है वो स्विमिंग करने बैठे कृष्ण। वो कृष्ण इधर उधर जा रहे थे, खालिया जो उनके पीछे पीछे जा रहा था, इधर उधर ऐसे घुमाते घुमाते खालिया जो है थक गया। खालिया थक गए, कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उनका पूंछ पकड़ के वो सर के ऊपर चढ़ गए कालिया। ऐसा बोला जाता है कालिया का 101 फण थे, 101 सर था उनके अंदर से जहर निकल रहा था। तो कृष्ण जैसे कालिया के सर के ऊपर चढ़े और वो कालिया के ऊपर चढ़ के वो नृत्य करने लगे। जैसे नृत्य करने लगे उनका चरण जैसे कालिया के सर के ऊपर पड़ रहा था, कालिया को ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों का एक बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर नाच रहा है, सारा ब्रह्मांड का भार उनके सर के ऊपर है। कृष्ण के चरण कमल जो है बहुत कोमल है, लेकिन फिर भी जब असुरों के ऊपर पड़ता है तो ऐसा बड़ा सा थंडरबोल्ट जैसा वज्र के जैसा कार्य करता है। तो कालिया के ऊपर जैसे एक सर के ऊपर वो चरण रखते थे, वो जो सर के अंदर जो विष है वो बाहर निकल उभर के आता था, यानी कालिया का हृदय में जो विष था वो सब कृष्ण जो है वो निकाल के बाहर करा रहे थे। उसी समय उसके जितने भी नाग पत्नियां, ऐसा बोला जाता है नागलोक में जो निवासी है, नागलोक के निवासी है, खास करके जो नाग पत्नियां हैं वो कृष्ण के भक्त है, वो सब लोग आए आके कालिया भगवान से प्रार्थना करने लगे। आप तो सुंदर सा नृत्य कर रहे हो, ये तो मेरा हमारा पति जो असुर है लेकिन फिर भी हमारा पति है, अगर उनका मृत्यु हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम बेसहारा हो जाएंगे, आप उनको छोड़ दीजिए करके वो लोग प्रार्थना किए। बहुत सुंदर नाग पत्नियों का प्रार्थना है। कृष्ण ने उन पत्नियों की प्रार्थना सुन के उन्हें क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका कार्य को मैं कुछ नहीं करूंगा, उनको केवल दमन किया है और उनको छोड़ दिया। ऐसा भी वर्णन आता है कि कृष्ण ने नाग पत्नियों का जो ऊपर का जो वस्त्र है, ऊपर जो ढकते वस्त्र है, वस्त्र को निकाले, निकाल के उन्होंने एक बड़ा सा वो जो साड़ी जैसा चीज है उसको रस्सी जैसा बनाए और कालिया के नाक में से घुसा के उन्होंने कालिया को जो है एक रथ जैसा बना के वो सवार रहे थे। क्योंकि कृष्ण जो है वो कम से कम दिखाना चाहते थे कि अपनी यशोदा मई नंद महाराज भी सब सीन को देख रहे थे। ये यशोदा मई नंद महाराज को भगवान जिस प्रकार इस जगत में देखते हैं कि माता पिता के सामने बच्चे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बैठते नहीं है, तो वैसे ही जो वात्सल्य रस के भक्तों के साथ भगवान माधुरी लीला नहीं करते थे, यानी नंद महाराज यशोदामय और वरिष्ठ गोप गोपियों वृंदों के सामने ये रास लीला हो गोपियों के साथ लीला वो नहीं करते थे, वो टोटली सेपरेट है क्योंकि ये दोनों जमता नहीं है, कभी नहीं होता है। तो लेकिन कभी कभी भगवान ने सोचा ठीक है थोड़ा सा रास तो दिखा दो इनको, थोड़ा सा माधुरी मेरा भी है कर दिखा दो, क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा बड़े हो रहे, 6 साल अभी 7 साल का हो रहा है। तो अभी उन्होंने इस प्रकार उन्होंने लीला प्रकाशित किया नाग पत्नियों का, क्योंकि उनको थोड़ा सा नाग पत्नियों का कालिया के पत्नियों का स्तुति सुन के भगवान ने कालिया को छोड़ दिया और कालिया भी भगवान का शरणागत हुआ। तब भगवान ने कहा कालिया को, अभी तुम भक्तों को परेशान मत करना, तुम इधर से निकल जाओ, जाके अभी कहां जाओ, फिजी आइलैंड्स जाओ। अभी भी कालिया नाग फिजी आइलैंड्स पे हैं। फिजी आइलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नजदीक में उधर पड़ता है फिजी आइलैंड्स। वो बहुत ज्यादा भारतीय लोग, मेरे इंडियन इमिग्रेंट्स है, बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स है, गवर्नमेंट भी इंडियन चलाते उधर। और उधर एक मंदिर है इस्कॉन का मंदिर, उधर का जो डेटीज का नाम है श्री श्री राधा कालिया कालिया कृष्ण, कालिया कृष्ण उसका नाम है, राधा कालिया कृष्ण, जैसे राधा माधव इधर है चंडीगढ़ में, तो वैसे ही फिजी का जो मंदिर का नाम है श्री श्री राधा कालिया कृष्ण, प्रभुपाद जी ने नाम दिया था उधर। उधर एक बड़ा बहुत बड़े व्यापारी है जीबीसी देयर और बहुत अच्छे भक्त है प्रभुपाद जी। पहले विजिट में वो उन्होंने 16 माला वगैरह जप करना शुरू कर दिया, प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया, वेरी नाइस डिवोटी। फिजी में बहुत सारा अच्छा प्रचार चलता है, तमाम कृष्ण महाराज वगैरह जाके प्रचार करते थे। तो इस प्रकार कालिया का दमन हुआ। तो ये कालिया क्या किसको सूचित करता है, कालिया सूचित करता है हमारे हृदय में अनर्थ, किस प्रकार का अनर्थ है, ईर्ष्या को सूचित करता है। जैसे हम अगासुर का लीला के चर्चा करते हुए कहा अगासुर भी सांप है कालिया भी सांप है, दोनों एक ही जैसा अनर्थ को सूचित करते हैं, क्योंकि सांप जो है ईर्ष्यालु होता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि सांप जो है वो बिना कारण का आके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो बिना कारण का हमको दुख पहुंचाना चाहता है। उनको बिना कारण बिना कोई हानि किए हुए आके आके उनको विरोध करेगा। जो ईर्ष्या बहुत खतरनाक बहुत गहरा अनर्थ है और ये एक ही कारण है ईर्ष्या जिसके वजह से सारे अनर्थ उत्पन्न होते सारे भौतिक बंधन भी उत्पन्न होते। ये भौतिक जगत में हम आने का एकमात्र कारण है ईर्ष्या। कृष्ण बहिर्मुख होए भोगवांछा करे। ये भोगवांछा हमारे अंदर क्यों आया यानी भोग वो एंजॉय करना ये एंजॉय करना वो खाना ये पीना ये वो देखना ये क्यों आया क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख है। बहिर्मुख होना मतलब ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्यालु होना। तो ईर्ष्या कहां से आई? ईर्ष्या की वजह से हम भौतिक जगत में आते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं इच्छा द्वेष समत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परान्तपः। सर्गे यान्ति सर्गे मतलब ये सर्ग ये भौतिक जगत में यान्ति मतलब आना क्यों है क्योंकि इच्छा द्वेष ये द्वेष या ईर्ष्या इसी के वजह से भौतिक जगत में माते यानी ये कितना खतरनाक चीज है देखिए। तो इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होना बहुत जरूरी है। और ईर्ष्या से कैसे मुक्त होंगे जब हम एक कालिया दमन की लीला को स्मरण करेंगे। जैसे हम काला दमन का लीला का स्मरण करते हुए श्रवण करेंगे तो हमको मालूम पड़ता है कृष्ण किस प्रकार हमारे जिह्वा के ऊपर नाचते नाचते जिस प्रकार कालिया की फणों के ऊपर नाचते नाचते कालिया के हृदय से उन्होंने जहर को निकाल के बाहर फेंक दिया था तो वैसे ही जो ईर्ष्या नामक जो जहर हमारे हृदय में है उसको भगवान श्री कृष्ण हमारे जिह्वा के ऊपर नाचते नाचते वो निकाल देंगे। आप बोल सकते हो कृष्ण जिह्वा के ऊपर कैसे नाचेंगे? आप सबको मालूम है कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई भक्त कृष्ण का नाम उच्चारण करता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और उच्चारण करते हुए नाचता है होता उस समय क्या होता है भगवान श्री कृष्ण हमारे जिह्वा के ऊपर नाचते हैं। इज डांसिंग ऑन अवर टंग। अष्टाक्षर स्वरूपेण मुकेश परिवर्तते मुकेश परिवर्तते। ये जो मुख में ही भगवान प्रकट होते हैं। जैसे व्यक्ति मुख से अपना हरि नाम जप करना शुरू करता है कृष्ण का नाम जप करता है जैसे कृष्ण का नाम जप करते हैं कृष्ण जिह्वा के ऊपर नाचते हैं नाचते नाचते हमारे हृदय में जो ईर्ष्या है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो लेकिन भक्तों को साधकों को यह सावधान रखना है कि ईर्ष्या का सबसे पहला रिजल्ट क्या है। ये व्यक्ति ईर्ष्यालु है कैसे मालूम पड़ता है? ईर्ष्या का सबसे पहला कार्य होता है ईर्ष्या क्या करा देता है आपको? सबसे पहला निंदा करा देता है व्यक्ति का। जैसे व्यक्ति आपके पास आके बोलेगा देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है कितना अच्छा भक्त है। आप बोला गया आप अगर ईर्ष्या करते हो बोलेंगे ये तो बेकार है ये तो ऐसे है ऐसे है तो तुरंत उनका जो है निंदा करना शुरू करते। तो इसलिए अगर आप ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हो हरिनाम जप करना होगा और साथ साथ में ये जो निंदा करने की प्रवृत्ति है उसको भी बंद करना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये हरिनाम को जप करते हुए अन्य निंदादि शून्यम दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति को बंद करेंगे तो व्यक्ति ईर्ष्या को हृदय से जल्दी निकाल सकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है वेरी डिफिकल्ट। तो अगर सच में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या है तो क्या करना चाहिए? हरिनाम जप करना चाहिए और उनका निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या की उद्वेग ना इतना बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? दो चीजें करना चाहिए। उस भक्त में कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुण है। कम से कम मंदिर तो आता है कम से कम कुछ तो कर रहा है तो वो चीज को हमको देखना चाहिए और उस चीज के बारे में बोलना चाहिए लोगों के सामने बोलना चाहिए खुद भी बोलना चाहिए देखो ये कितना अच्छा है ये कितना अच्छा प्रणाम करता है। कम से कम इतना बोल सकते हैं कितना अच्छा तिलक लगाता है उतना तो बोल सकते हो। तो ऐसा खुलेआम बोलने से जस्ट बाय टेलिंग इट ओपनली तो इससे क्या होगा हमारा ईर्ष्या कम होगा और उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीधे तरीके से उल्टे तरीके से किसी भी हालत में सेवा कर सकते। तो ईर्ष्या ऐसा वस्तु है कल उसके बारे में हम विस्तृत प्रवचन दिए थे उधर कहा गए थे उधर पंचकुला में बड़ा प्रोग्राम था थोड़ा बड़ा प्रोग्राम था उधर ईर्ष्या के बारे में चर्चा की है उधर भी यही बात बताए। ईर्ष्या ऐसी वस्तु है क्योंकि भौतिकवादी लोग भी बैठे थे नए लोग भी बैठे थे और भक्त लोग भी बैठे थे तो ये भौतिकवादियों के लिए कह रहे थे कि ये ईर्ष्या ऐसी वस्तु है तो आपका भौतिक जीवन को भी नाश कर देता है। जैसे व्यक्ति के पास भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करता है तो या पूर्ण होता है जैसे कि किसी को इच्छा आइसक्रीम खाने का तो जब आइसक्रीम खाता है तो कुछ ना कुछ तो सुख मिलता है यानी काम इच्छा कुछ ना कुछ तो भौतिक सुख दे देता है। लेकिन ईर्ष्या ऐसा वस्तु है, आपके साथ भौतिक सुख होने पर भी आप दुखी रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका इच्छा हुआ कि मुझे बड़ा सा गाड़ी खरीदना है, 10-15 लाख का गाड़ी खरीदना है, खरीद लिया तो बहुत खुश हो गए, लेकिन बाजू वाले ने 50 लाख का गाड़ी खरीदा, तो ये 15 लाख का गाड़ी होने पर भी सामने आप दुखी रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक जीवन की क्या कहना है, भौतिक जीवन को भी नष्ट कर देता है ईर्ष्या। तो इसलिए इसको त्याग करना चाहिए। इसको त्याग करने के लिए हमको बहुत सावधानी से कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, और केवल भक्तों का या कोई व्यक्ति का, इवन भौतिकवादी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो उनका कोई भी अच्छे गुण है तो बोलने में क्या जाता है, इफ समबडी इज डूइंग नाइस, उन्हें बोलने में कुछ हानि तो नहीं है, सच्ची बोल रहे, तो इससे हमारा ईर्ष्या से हम मुक्त हो सकते, इससे हम फिर से भव बंधन में वापस नहीं आएंगे। तो ये कृष्ण का सहारे से, कृष्ण का नाम के सहारे से हमारे हृदय में जहर है, जहर की वजह से रह, जहर मतलब हमको मार देगा, मृत्यु है, मृत्यु का कारण है। तो ईर्ष्या भी मृत्यु का कारण है, भव बंधन का कारण है, इससे हम मुक्त हो सकते कृष्ण के सहारे से। कृष्ण का नाम जप करते हुए, कभी किसी का निंदा नहीं करते हुए, दूसरों का गुणों को देखते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, साधक बहुत शीघ्र अतिशीघ्र जल्द ही ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है, निर्मत्सर बन सकता है, और सभी लोगों का मित्र के रूप में अपने आप को पेश कर सकता है। क्योंकि जब तक हृदय में ईर्ष्या है, आपका कोई आपके साथ में कोई बैठना नहीं चाहेगा, आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। तो क्यों, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आप ईर्ष्या से मुक्त हो तो धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजित हो। छठ गोस्वामी अष्टक में आता है, धीर और अधीर, अच्छे लोग और बुरे लोग, ये दोनों के लिए प्रिय हो जाएंगे। क्यों, दोनों के लिए प्रिय थे कौन, छठ गोस्वामी क्यों प्रिय थे, क्योंकि निर्मत्सर सभी लोगों के द्वारा पूजनीय थे। क्यों, निर्मत्सर के अंदर कोई मत्सरता नहीं था। और भागवत को भी अगर समझना है, सबसे पहला योग्यता यही है, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। जब तक आप निर्मत्सर नहीं होंगे तब तक भागवत के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते, भागवत को सही में समझ नहीं सकते, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का सहारा लेते हुए हमको ईर्ष्या से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो उनके नाम से ईर्ष्या करते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, अगर कोई व्यक्ति उसका नाम भी लेता है, बस नाम मत लेना। ऐसा है
तो उसके लिए क्या
करना, ये साधन तो अपना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बीमार है और बहुत गहरा बीमारी है, वो डॉक्टर को ऑपरेशन करने देना होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो कैंसर को निकालेगा, तो उस समय हमको क्या करना होगा, एक ही चीज करना होगा, वो डॉक्टर का शरणागत होना पड़ेगा। आपको खुद को निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्तों का शरण लो, गुरु का शरण लो, और वो लोग ऑपरेट करेंगे और निकालेंगे कैंसर को।
विद रिस्पेक्ट टू देहात में बुद्धि जी सर, लाइक बलराम किल्ड इट, एंड देन यू एक्सप्लेन, जस्ट एक्सप्लेन अ बिट मोर, लाइक फॉर अर्जुना कृष्णा हिमसेल्फ गेव द भगवद गीता विच इज लाइक नॉलेज फॉर क्यूरिंग दिस देहात्म बुद्धि।
कृष्ण उस समय गुरु के रूप में प्रकाशित है, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन जो है उन्होंने क्या किया, शिष्यस्तेहम शादी माम प्रपन्नम, सो ही सरेंडर टू कृष्ण एंड एक्सेप्टेड कृष्ण एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। सो कृष्ण देयर इज एक्टिंग एज स्पिरिचुअल, एक्चुअली बलराम इज ऑल्सो कृष्ण, बलराम जी भी कृष्ण है, लेकिन इधर कृष्ण ऐसे दिखा रहे सारे जगत को, ये भगवान भगवान के रूप में नहीं करूंगा, गुरु के रूप में कार्य करूंगा। ये उन्होंने कहा एवरीथिंग इज डन बाय कृष्ण, ब्लेड ऑफ ग्रास डजंट मूव विदाउट कृष्ण, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्ण, बट ही डज इट थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर, ही डजंट डू इट डायरेक्टली टू ए साधक, डज इट थ्रू ए स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है,
पहले क्वेश्चन में कंटिन्यूशन में जैसे आपने कहा गुरु की शरण होना चाहिए, गुरु कहते हैं कि चैंटिंग अच्छे करो,
गुरु और भक्तों का भी कहा था,
भक्त भी कहते हैं अच्छी चैंटिंग करो, प्रॉपरली चैंटिंग करो, तो फिर हम चैंटिंग कोशिश करते हैं फिर वैसा ही होता है।
ये इस्कॉन में हर भक्त का यही प्रश्न है। जब से शुरू हुआ है वही प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। ट्राई ट्राई एंड ट्राई।
ठीक है, हरे कृष्ण।